लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, मानव के रूप में हम सभी की बहुत सारी इच्छाओं में से एक इच्छा अपने बारे में यह जानने की होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, या दूसरों के बीच हमारा क्या इम्प्रेशन है, हमें लोग किस रूप में देखते हैं, लोगों के बीच में हमारी छवि कैसी है। स्वयं से हमारा यह सवाल करते हुए इस पर विचार मंथन करना हमें व्यक्तिगत रूप में अपना मूल्यांकन करने को मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने में विकास और बेहतर करने की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा ऐसा करना बहुत बार हमें मनोवैज्ञानिक रूप से अपने व्यक्तित्व में निखार लाने को प्रेरित करता है, जहां हम अपने में परिवर्तन की बातों को पाते हैं। श्रोताओं, कलिस्सा के दो स्तंभ संत पेत्रुस और पौलुस की शहादत के महापर्व आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार में हम यीशु को शिष्यों से अपने संबंध में सवाल करते हुए सुनते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं से पूछें कि हम यीशु के बारे में क्या जानते हैं और दूसरों को उसके बारे में क्या बतलाते हैं। क्या हमने व्यक्तिगत रूप में कभी यह जानने का प्रयास किया है कि वे हमारे लिए कौन हैं?
ईसा ने कैसीरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन यीशु के निकट रहने की एक तीव्र इच्छा जागृत करें, जिससे हम उन्हें गहराई और निकटता से जान सकें, जो हमें उन्हें सही अर्थ में अनुसरण करने और सच्चे मन, दिल और हृदय से प्रेम करने को प्रेरित करेगा, जिसकी चाह वे हम सबों से करते हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित्र से लिए गए आज के पहले पाठ में हम प्रेरित पेत्रुस को हेरोद के हाथों से चमत्कारिक ढंग से बचाए जाने की बात सुनते हैं। ईश्वर अपने चुने हुए सेवक को अपना दूत भेजकर बंदीगृह से बाहर निकालते हैं, जिससे वे ईश्वर से मिले कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। पेत्रुस के लिए उनका कैद खाने से बचाया जाना एक सपने की भांति लगता है। पेत्रुस का हेरोद के हाथों से बचाए जाना हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा किए गए चमत्कारिक कार्यों की याद करने और उनके लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करने का आह्वान करता है। श्रोताओ, हम में से हर कोई कैद खाने से बाहर नहीं निकाले गए होंगे, लेकिन निश्चित रूप में ईश्वर से हमने अपने जीवन की कई परिस्थितियों में हानिकारक घटनाओं, पाप, मृत्यु और कई तरह की दुर्घटनाओं तथा बुराइयों से बचाकर जीवन के मार्ग में आगे लिए गए हैं। यह इसलिए कि हम अपने जीवन में ईश्वर के कार्यों को घोषित करते हुए उनकी महिमा और स्तुति कर सकें। प्रेरित पेत्रुस के संग हुई घटना और उनका बचाए जाना हमारे लिए इस बात को भी घोषित करता है कि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को यूं ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वे उनके संग रहते, उनके संग चलते और विभिन्न रूपों में उन्हें सुरक्षित रखते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। लेकिन जीवन की उधेड़ बुन और अपनी चिंताओं में पड़े रहने के कारण हम विरले ही ईश्वर की उपस्थिति और कृपाओं को देखने में सक्षम होते हैं। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ ईश्वर के द्वारा हमारे बचाए जाने के कारण को स्पष्ट करता है। संत पौलुस स्वयं अपने बचाए जाने के कारण को जानते और समझते हैं, अतः वे अपने को मिले कार्यों की परिपूर्णता व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास में अपनी एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। हम सभी विश्वास में अपने जीवन में मिले अपने कार्यों को ईश्वर के लिए पूरा करने हेतु बुलाए गए हैं। हम सभी अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपने जीवन की दौड़ को पूरा करने को कहे जाते हैं, जो हमारे लिए निश्चित रूप में एक बड़ी चुनौती लगती है। इस भांति जीवन की हमारी दौड़ अपने लिए नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के लिए है, जिन्होंने हमें अपने लिए बनाया है, जो इस दौड़ को पूरा करने के उपरांत हमारे लिए धार्मिकता का मुकुट प्रदान करने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु ख्रीस्त के व्यक्तिगत ज्ञान की चर्चा सुनी, जिसे स्वयं यीशु ख्रीस्त हम में से प्रत्येक जन से पूछते हैं कि हमारे लिए वे कौन है। यह हम सबों के लिए एक अहम सवाल है, जो हमारे जीवन की दौड़ को पूरा करने में हमें मिलने वाली ऊर्जा और शक्ति का स्रोत बनता है। मुक्तिदाता यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानना, अपने को उनके संग संयुक्त करना और उनके सानिध्य में जीवन यापन करना हमें जीवन की थकान उपरांत भी अपने में सदैव तरोल ताजा बनाए रखता है। पेत्रुस की तरह ही ईश्वर हमें अपनी शक्ति से भर देते हैं, जिससे हम दूसरों के लिए वह कुंजी बन सकें जो स्वर्ग द्वार को खोलने में मदद करती है। आइए हम पवित्र आत्मा से विवेक की मांग करें, जिससे हम मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के चमत्कारिक कार्यों को अपने जीवन में देख सकें, जो हमें उन्हें व्यक्तिगत रूप में जानने और प्रेम करने को मदद करेगा।
प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, ये जला है उसमें तू ही तो है जिसे पूजा है मैंने।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार कुस्तुनतुनिया के क्रिस्ते एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल कैथोलिक एवं ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के बीच एकता निर्माण में मदद करने के लिए इस सप्ताह रोम में है। कुस्तुनतुनिया के क्रिस्ते एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल 27 से 29 जून को रोम का दौरा कर रहा है, जिसकी घोषणा वैटिकन प्रेस कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान के माध्यम से की। यह यात्रा संरक्षक संतों के पर्वों के लिए प्रतिनिधिमंडल के पारस्परिक आदान प्रदान के हिस्से के रूप में हो रही है, जिसमें 29 जून को रोम में प्रेरित संत पेत्रुस एवं पौलुस के महापर्व के लिए कुस्तुनतुनिया का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल रोम आता है और 29 जून को प्रेरित संत अंद्रियास के पर्व के लिए वैटिकन के प्रतिनिधि इस्तांबुल जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स प्रतिनिधि का नेतृत्व खालदेई महाधर्म अध्यक्ष इमानुएल कर रहे हैं, जो कैथोलिक कलीसिया के साथ संबंधों के लिए ख्रिस्त एकता के धर्म सभा आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रविवार 29 जून को संत पेत्रुस एवं पौलुस के महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें की अध्यक्षता में आयोजित ख्रिस्तयाग में भाग लेंगे और शनिवार 28 जून को पोप से मुलाकात करेंगे। संत पेत्रुस एवं पौलुस के महापर्व पर ख्रिस्त एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने एक पूर्ण दृश्य समन्वय को बहाल करने के उद्देश्य से सम्मानजनक संवाद एवं सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संत पेत्रुस एवं पौलुस के महापर्व के अवसर पर ऑर्थोडॉक्स प्रतिनिधिमंडल रोम के दौरे पर है। कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्त एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए पोप लियो ने शनिवार को ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के साथ मेल मिलाप एवं एकता के मार्ग के लिए कैथोलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अपने परमाध्यक्ष काल में पहली बार इस तरह की मुलाकात करते हुए उन्होंने हमारे बीच पहले से मौजूद गहन संवाद पर चिंतन किया और कहा कि प्रेरितों संत पेत्रुस एवं अंद्रियास के महापर्वों के लिए प्रतिनिधिमंडलों का पारस्परिक आदान प्रदान बंधुत्व के संबंध का प्रतिबिंब है, जिसने प्रेरित पेत्रुस एवं अंद्रियास को एकजुट किया। रोम और कुस्तुनतुनिया के बीच मेल मिलाप के विभिन्न चरणों पर गौर करते हुए पोप लियो ने पोप पॉल 6वें एवं ख्रिस्त एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष अथनागोरस के साहसी और दूरदर्शी प्रयासों को कृतज्ञता के साथ याद किया, जिनकी 1964 में ऐतिहासिक मुलाकात ने आधुनिक ख्रिस्त एकता संवाद की नींव रखी। उन्होंने कहा कि उनके उत्तराधिकारियों ने मेल मिलाप के उसी मार्ग को दृढ़ विश्वास के साथ अपनाया है। विशेषकर उन्होंने पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में और पोप लियो 14वें के परमाध्यक्ष काल के उद्घाटन के अवसर पर ख्रिस्त एकता के प्राधिधर्म अध्यक्ष बर्थोलोमियो की उपस्थिति को याद किया। उन्होंने कहा, मैं आपको हमारी कलीसियाओं के बीच पूर्ण दृश्यमान समन्वय के प्रयास में दृढ़ रहने की इच्छा का आश्वासन देता हूँ। और उन्होंने जोर दिया कि यह समन्वय सिर्फ ईश्वर की मदद से सम्मानपूर्ण सुनने और भाईचारेपूर्ण संवाद के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से आ सकती है। सहयोग के लिए तैयार पोप लियो ने विचारों और सहयोग के लिए अपना खुलापन व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस संबंध में आपके द्वारा दिए जाने वाले हर सुझाव के लिए तैयार हूँ, हमेशा कैथोलिक कलीसिया के मेरे भाई धर्म अध्यक्षों के परामर्श से, जो कलीसिया के पूर्ण एवं दृश्यमान एकता के लिए मेरे साथ जिम्मेदारी साझा करते हैं। अपने संबोधन के अंत में पोप लियो ने रोम में प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और उनसे प्राधिधर्म अध्यक्ष बर्थोलोमियो एवं पौत्र धर्म सभा को अपना अभिवादन और आभार व्यक्त करने का आग्रह किया। माननीय धर्माध्यक्ष एलियस फ्रैंक कलकत्ता महाधर्म प्रांत के नए सहायक महाधर्माध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति की घोषणा शनिवार 28 जून को संत पापा लियो 14वें ने की। इससे पहले वे असनसोल के धर्माध्यक्ष थे। नवनियुक्त सहायक महाधर्माध्यक्ष एलियस फ्रैंक का जन्म 15 अगस्त 1962 को मैंगलोर के बटवाल धर्म प्रांत में हुआ था। 12-7 में सेंट जॉन वियनी मेजर सेमिनरी में पढ़ाई के बाद उन्होंने बैरकपुर के मॉर्निंग स्टार रीजनल सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और रोम के परमधम पीठे उर्बनियन विश्वविद्यालय में ई शास्त्र का अध्ययन किया और 23 अप्रैल 1993 को कलकत्ता महाधर्म प्रांत में उनका पुरोहिताभिषेक संपन्न हुआ। 1997 में जब असनसोल धर्म प्रांत बना तो वे नए धर्म प्रांत में शामिल हुए। 2023 में संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें असनसोल धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। पोप लियो 14वें ने स्वीकार किया कि इस निरर्थक युद्ध के बीच यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिकों के विश्वास को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रभु का ही अंतिम निर्णय होगा और जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। शनिवार को वैटिकन में यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिकों से पोप ने कहा कि भले ही आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। पोप ने कहा कि वे यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के प्रिय विश्वासियों को बधाई देते हैं जो जयंती वर्ष के अवसर पर प्रेरित संत पेत्रुस की कब्र पर आए हैं। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए पोप लियो ने कहा, मैं शहीद यूक्रेन के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और विशेषकर अपने प्रियजनों के लिए शोक मना रहे परिवारों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करता हूँ। संत पिता ने यह भी आश्वासन दिया कि वे उनके इरादों, उनके दैनिक संघर्षों और त्रासदियों तथा सबसे बढ़कर शांति और स्थिरता के लिए उनकी लालसा को प्रभु को सौंपते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप सभी पुरोहित और विश्वासी साथ साथ चलें, अपनी आंखें अपने उद्धारकर्ता यीशु पर टिकाए रखें। आपके तीर्थयात्रा विश्वास को नवीनीकृत करने, रोम के धर्माध्यक्ष के साथ संबंध एवं संवाद को मजबूत करने तथा उस आशा की गवाही देने की इच्छा का संकेत है जो निराश नहीं करती, क्योंकि यह पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे दिलों में डाले गए मसीह के प्रेम से पैदा हुई है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि जयंती हमें वर्तमान समय की प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने पूरे जीवन में उसी आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए बुलाती है। पोप ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने प्रियजनों, साथी देशवासियों और महिलाओं तथा उन सभी लोगों के साथ इस विश्वास को साझा करें जिन्हें प्रभु उनके मार्ग में रखते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जयंती सभी विश्वासियों को वर्तमान समय की प्रतिकूलताओं के बावजूद हमें जीवन भर आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए बुलाती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पौत्र द्वारों से होकर गुजरने और प्रेरितों एवं शहीदों की कब्रों पर रुकने के साथ रोम की उनकी यात्रा उस दैनिक यात्रा का प्रतीक है जो अनंत काल की ओर उन्मुख है, जहाँ प्रभु हर आंसू पोंछ देंगे और फिर कोई मृत्यु नहीं होगी और ना ही शोक, ना ही रोना और दर्द होगा। पोप लियो ने प्रार्थना करते हुए अंत में आशा की माता धन्य कुंवारी मरियम से प्रार्थना की कि वे उनका मार्गदर्शन करें, उनकी रक्षा करें तथा उनके परिवारों, गिरजाघरों और सभी लोगों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।
कदम दर कदम पोप लियो 14वें दुनिया को अपना परिचय देते हैं।
आप सबों को शांति मिले
और उसी क्षण से उनके कदम हमारे भी बन गए हैं।
मैं आपके पास एक भाई के रूप में आया हूं, जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है।
संत पेत्रुस की दान राशि में अपने योगदान के साथ संत पिता के कदमों का ठोस रूप से समर्थन करें। आप उन्हें दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करेंगे और जरूरतमंद भाइयों और बहनों की सहायता में हाथ बटाएंगे।
भाइयों, बहनों, यह प्रेम का समय है।
पोप लियो 14वें के कदमों का समर्थन करें। संत पेत्रुस के अनुदान राशि में योगदान दें। santpietro.va के साइट www.obolo पर जरूर जाएं।